बड़ी खूबसूरत सूरत बड़ी मोहब्बत से शुरू करते हैं सूरत अल कहफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। सूरत कहफ के बारे में हम जानते हैं कि ये हर जुमे को अल्लाह के नबी सल्लम पढ़ा करते थे। बहुत सारी इसकी रिवायात हैं जिनका खुलासा क्या है कि एक जुमे से दूसरे जुमे तक नूर भी होता है। और असल में नूर क्यों है, ये थोड़ा सा मैं आपको इसका थीम बता दूं तो आप फिर उस सोच से इसको सुनिएगा, क्योंकि हमारा एक मिजाज बन चुका है सिर्फ वजीफे के तौर पर पढ़ना। और वो लोग जो हर हफ्ते ही सूरत को पढ़ते हैं वो उसके मेन मैसेज को नहीं समझते। इस सूरत में मटीरियलिज्म का खात्मा है। आज के दौर का सबसे बड़ा बुत मटीरियलिज्म है, मादा परस्ती। तीन वाक्यात इस सूरत में पेश हुए हैं। आप देखेंगे कि तीनों के बाद अल्लाह ताला अपनी ही बड़ाई को साबित करता है। और ये भी सूरत उन्हीं आयतों में से थी कि जो मक्का वालों के मुतालबे पे नाजिल हुई थी। एक मौके पे उन्होंने अल्लाह के नबी से कुछ मुतालबात किए थे तो उसके जवाब में ये आयतें नाजिल हुई। हम सब इन आयतों को सुनते वक्त जरूर इसकी एक एक आयत के तर्जमे पे गौर करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ने इस सूरत को हर जुमे को पढ़ने की दावत दी। और इंशाल्लाह इसके बाद अब जो भी जुमा हमारी जिंदगी में आएगा उस वक्त जब आप इस सूरत को पढ़ें तो जरूर इस सूरत का पैगाम देखेंगे कि ये हमसे किस तब्दीली का मुतालबा करता है। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफें उसी अल्लाह के लिए सजावार हैं जिसने अपने बंदे पर ये कुरान उतारा और इसमें कोई कसर बाकी न छोड़ी, बल्कि हर तरह से ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास की सख्त सजा से होशियार कर दे और ईमान लाने और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियां सुना दे कि इनके लिए बेहतरीन बदला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और इन लोगों को भी डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ। दर हकीकत ना तो खुद उन्हें इसका इल्म है न इनके बाप दादाओं को। ये तोहमत बड़ी बुरी है जो इनके मुंह से निकल रही है और ये निरा झूठ बोल रहे हैं। ये थी आयत नंबर 1 से 5। इसका अनवान लिखेंगे अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए आखिरी किताब भेजी। कुरान पाक क्या है? आज की जुबान में आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि पुरानी किताबों का न्यू टेक्स्ट, न्यू एडिशन, न्यू मॉडल, लेटेस्ट वर्जन ऑफ दी ऑल होली बुक्स। एक दफा किसी क्रिश्चियन से भी मेरी बात हुई तो मैंने उसको यही बात सामने रखी थी कि देखें आप टीवी कौन सा खरीदती हैं जो लेटेस्ट हो, कंप्यूटर कौन सा खरीदती हैं जो लेटेस्ट हो। हर बंदा चाहता है उसके पास गाड़ी बिल्कुल न्यू मॉडल की हो। तो कुराने पाक क्या है? ये पिछली तमाम किताबों का मजमुआ। जो चीजें निकालनी थी वो निकल गई, जो रखनी थी वो रख दी गई, जो इजाफे किए लोगों ने उसको कुराने पाक ने खोल के बयान कर दिया। आज अगर किसी को बहुत शौक भी है ना तौरात और इंजील पढ़ने का तो उसको कुराने पाक दे दें, क्योंकि कुरान पाक में वो सारी आयतें मौजूद हैं जो तौरात में दुरुस्त थीं और आज भी वैलिड हैं और इंजील का भी पैगाम उसके अंदर महफूज है। हमें इसमें कितनी अपने लिए खुशकिस्मती तसव्वुर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें फितनों में डाले बगैर एक सीधी किताब दे दी। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर हम किसी ऐसे घर पैदा हो चुके होते जो इस्लाम की शम्मा से दूर है, क्या हमारे पास कुरान का इतना इल्म है कि हम इसको सीख के समझ के दीन की तरफ आते? क्या हमें इस्लाम से ये मोहब्बत है? रिस्क था ना, खतरे पे थे, तो अल्लाह ने जो बड़ी प्यारी किताब हमें दी अब उस किताब का मकसद हमने अपनी जिंदगी में लाना है। और वो क्या के लिए? युनज़िरा बा संशदीदा। ये किताब इंसान को सीधा कर देती है। इन आयत में किताब की एक खूबी कईम आया है। ये कय्यम होना ही असल में इस बात की दलील है कि ये सबको सहारा देगी। जब टेबल खुद ही टेढ़ा होता है ना तो उसके ऊपर आप कुछ रख नहीं सकते। ये किताब वो मीजान देती है जिसको आज के दौर में आप लोगों की तरक्की के लिए पेश कर सकते हैं। और अल्लाह करे कि हम मुसलमानों को इसकी कदर हो जाए। आगे अब अल्लाह के नबी के दिल की वो तड़प जो हमारे अंदर भी होनी चाहिए उसका तस्करा है। क्या फल अल्लाह का बाखियन नफ्सकाला सारी मिल्लम यू मिनु बिहाजल हदीस या सफा। बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाएं तो क्या आप इनके पीछे इसी रंज में अपनी जान हलाक कर लेंगे? इन्ना जालना माल अलर्दि ज़ीनतल्लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। बेशक रुए जमीन पर जो कुछ है हमने उसे जमीन की रौनक का बायस बना दिया। हम इन्हें आजमा लेंगे कि इनमें से कौन नेक अमल करने वाला है। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। इस पर जो कुछ है हम उसे एक हमवार साफ मैदान बनाकर रखने वाले हैं। ये थी आयत नंबर 6 to 8। इसका अनुमान लिखिए दुनिया की दिल फरेबियाँ आरजी हैं। दो बातें हैं इन तीन आयतों में। पहली अल्लाह के नबी की सच्ची तड़प। आप इस आयत को हाईलाइट कीजिए। बाख़ उन नफ्स का बखा जबह की तरह होता है। ज़िबा करते हैं ना किसी जानवर को, इसी तरह बखा होता है। अल्लाह के नबी के दिल में इसकी इतनी ज्यादा तड़प थी कि लोग ईमान क्यों नहीं लाते, इस बात को मानते नहीं। और हाजल हदीस क्या है, ये बात कुरान तौहीद। क्या हमारे दिल में भी ये तड़प है? सच बताएं, सोचें, अपने आप से सच बोलें कि मेरे दिल को जो गम लगे हुए हैं, क्या उन गमों में औलाद, माल, घर, शौहर, बीवी, बच्चों के गम के अलावा ये गम भी है कि नहीं कि लोगों को इस किताब से जोड़ना है। लोग ईमान के बगैर जा रहे हैं दुनिया से। कभी कोई नॉन मुस्लिम फौत होता है, और खास तौर पे जो बड़ा शोहरत याफ्ता होता है, तो मेरे दिल में एक हूक उठती है। मैं कहती हूँ कि इसको किसी ने नहीं बताया। एक दफा मुझे कोई एक बहुत ओल्ड लेडी मिली, किसी हॉस्पिटल में थी, मैं देखने गई किसी को, तो वहां थी, 90s में होंगी, छुरियां पड़ी हुई और इस तरह की बात, तो मेरे दिल से एकदम, जैसे कहते हैं ना, बंदे का दिल पसीजे। मैंने सोचा एक सदी के करीब हो गया इसको दुनिया में आए हुए, इसको नहीं मिला ये पैगाम कि ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी लम्हे दुनिया से चली जाएगी, अब कोई इस तक नहीं पहुंचा। ये तड़प पैदा करने की जरूरत है। और ये कब पैदा होती है? जब अपनी जात से ऊपर होके सोचते हैं आप। और ये कब पता चलती है? जब दुनिया की हकीकत खुलती है। इस आयत को हाईलाइट कीजिए कि भाई नल जाए लू नमा अलई हसई दंजरुजा, हम एक दिन इस सारी जमीन को मट्टी बनाने वाले हैं, चट्टियल मैदान बनेगा, ये बड़े बड़े घर खत्म हो जाएंगे, ये टीले टिब्बे सब खत्म होगा। दुनिया में आने का मकसद बता दिया कि लीना ब्लूवा हुमैयु हुमा अहसनु अमला। आपने कभी एक माँ को देखा है जो बच्चे को बड़े प्यार से खिलौना दिलाती है? उसकी ख्वाहिश क्या होती है कि ये खिलौने पाके बच्चा मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरी और कदर करेगा, क्योंकि मैंने इसकी ख्वाहिश पूरी की है। लेकिन इसके बरक्स मामला क्या होता है कि बच्चा उसी खिलौने में इतना मसरूफ होता है कि माँ उसको खाने के लिए बुलाती है तो वो नहीं आता, माँ उसको सोने के लिए बुलाती है वो नहीं आता, माँ नहलाने के लिए बुलाती है वो नहीं आता। क्यों? कि वो उस खिलौने में मगन है। आप क्या कहेंगे उस बच्चे को? बचपन है ना, माँ गुस्से में पकड़ के उसका खिलौना छुपा देती है कि जाओ अब देखती हूँ कहाँ से लाता हूँ। यही हम सब के साथ हो रहा है। अल्लाह ने हमें ये जो दुनिया की नेमतें दी थी ना, क्यों दी थी? इनको पाके देने वाले के मजीद शुक्रगुजार बन जाओ। और हमारा हाल क्या हो गया कि इन्हीं चीजों में खो के अब कहते हैं कि कारे जहां दराज है, अब मेरा इंतजार कर। इन नेमतों में इतने मसरूफ है, खेल खिलौनों में, इन घर घरौंदों में, इस दुनिया में, कि अब कहते हैं अल्लाह हमारे पास तेरा वक्त ही नहीं है। जरा इस आयत पे तदब्बुर कीजिएगा बाद में, आयत नंबर 8 पे, कि एक वक्त आएगा सब चटियल बन जाएगा। अपने घर को जरा तसव्वुर में लाएं कि बिलडोजर फिर के बिल्कुल साफ हो गया। और ये कायनात के साथ होने वाला एक दिन, वही बचेगा जिसने आगे कुछ बना लिया होगा। अब यहाँ से आगे अस्हाबे कहफ का किस्सा है, इसके अंदर से बहुत सारे सबक इंशाल्लाह हम अपने लिए खस करेंगे, और इसी वजह से सूरत को सूरतुल कहफ कहते हैं। अम हसिबतन अस्हाबल कहफ वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या तू अपने ख्याल में गार और कतबे वालों को हमारी निशानियों में से कोई अजीब निशानी समझ रहा है? इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि हमारे परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी को आसान कर दे। बस हमने उनके कानों पर गिनती के कई साल तक उस गार में पर्दे डाल दिए, फिर हमने इनको उठा खड़ा किया ताकि हम मालूम कर लें कि दोनों गिरोहों में से इस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी किसने ज्यादा याद रखा है। इनका सही वाक्या हम तेरे सामने बयान फरमा रहे हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनकी हिदायत में तरक्की दी थी, हमने इनके दिल मजबूत कर दिए जबकि ये उठ खड़े हुए और कहने लगे हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमानों जमीन का परवरदिगार है, नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और माबूद को पुकारे, अगर ऐसा किया गया तो हमने नहायत ही गलत बात कही, ये है हमारी कौम जिसने इसके सिवा और माबूद बना रखे हैं, इनकी खुदाई की ये कोई साफ दलील क्यों पेश नहीं करते? अल्लाह पर झूठ इफ्तरा बांधने वाले से ज्यादा जालिम कौन होगा? जबकि तुम इनसे और अल्लाह के सिवा उनके और माबूदों से किनारा कश हो गए तो अब तुम किसी गार में जा बैठो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में सहूलत मुहैया कर देगा। आप देखेंगे कि सूरज बवक्ते तुलू इनके गार से दाई जानिब को झुक जाता है और बवक्ते गरूब इनके बाई जानिब कुतरा जाता है, और वो इस गार की कुशादा जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह ताला जिसकी रहबरी फरमाए वो राह रास्त पर है, और जिसे वो गुमराह कर दे नामुमकिन है कि आप इसका कोई कारसाज और रहनुमा पा सकें। आप ख्याल करते कि वो बेदार हैं हालांकि वो सोए हुए थे, खुद हम इन्हें दाएं बाएं करवटें दिलाया करते थे। अल्लाह अकबर। इनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुआ था। अगर आप झांक कर इन्हें देखना चाहते तो जरूर उल्टे पांव भाग खड़े होते और उनके रोब से आप पर दहशत छा जाती। इसी तरह हमने इनको जगाकर उठा दिया कि आपस में पूछ गिछ कर लें। एक कहने वाले ने कहा, क्यों भाई, तुम कितनी देर ठहरे रहे? उन्होंने जवाब दिया, एक दिन या एक दिन से भी कम। कहने लगे कि तुम्हारे ठहरे रहने का बखूबी इल्म अल्लाह ही को है। अब तो तुम अपने में से किसी एक को ये चांदी देकर शहर भेजो, वो खूब देखभाल ले के शहर का कौन सा खाना पाकीज़ा तर है, फिर इसी में से तुम्हारे खाने के लिए ले आए और वो बहुत एहतियात और नरमी बरते और किसी को तुम्हारी खबर न होने दे। अगर ये काफिर तुम पर गलबा पा लें तो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें फिर अपने दीन में लौटा लेंगे, फिर तुम कभी भी कामयाब ना हो सकोगे। वकज़ालिका असरना अलैहिम, और हमने इसी तरह लोगों को इनके हाल से आगाह कर दिया कि वो जान लें कि अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है और कयामत के आने में कोई शक को शुबा नहीं, जबकि वो अपने अमर में आपस में इख्तलाफ कर रहे थे। कहने लगे, इनके घर पर एक इमारत बना लो, इनका रब ही इनके हाल का ज्यादा आलम है। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे, हम तो इनके आसपास मस्जिद बना लेंगे। कुछ लोग तो कहेंगे कि असहाबे कहफ तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे पांच थे और छठा उनका कुत्ता था। गैब की बातों में अटकल के तीर तुक्के चलाते हैं, कुछ कहेंगे वो सात हैं और आठवां उनका कुत्ता था। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानता है, इन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस आप इनके मुकदमे में सिर्फ सरसरी किस्म की गुफ्तगू करें और इनमें से किसी के बारे में भी पूछगिछ ना करें, और हरगिज हरगिज किसी काम पर यूं ना कहना चाहिए कि मैं इसे कल कर लूंगा, मगर साथ ही इंशाल्लाह कहना चाहिए, और जब भी भूले तो अपने परवरदिगार की याद कर ले और कहते रहना चाहिए कि मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरा रब इससे भी ज्यादा हिदायत के करीब की बात की रहबरी करे। वला भी सूफी काफी एम सला समियत इन सिनीन, ये लोग अपने गार में 300 साल तक रहे और 9 साल और ज्यादा गुजरे। आप कह दीजिए, अल्लाह ही को इनके ठहरे रहने की मुद्दत का बखूबी इल्म है, आसमान और जमीन का गैब सिर्फ इसी को हासिल है, वो क्या ही अच्छा देखने सुनने वाला है, सिवाय अल्लाह के इनका कोई मददगार नहीं, अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। ये थी आयत नंबर 9 से 26, 9 to 26। इसका उन्वान लिखिए, ईमान के तकाजे। घर के आराम से निकाल कर गार में ले आया। बहुत खूबसूरत वाक्य है, और एक बंदा मोमिन को इस वाक्य पे जरूर गौर करना है कि ये लोग हमें क्या सिखा गए। असल में ये कलामती वाक्य है। कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का ये वाक्य है कि एक बादशाह था, वहां डिटेल्स की जरूरत नहीं, और बहुत सारे लोग इनको सेवन स्लीपर्स के नाम से भी जानते हैं। आप कह लें कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के वक्त पे कुछ लोग जो जवान थे, यूथ थे, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो, हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हो और हजरत बिलाल वगैरह, इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था ना, और इस्लाम की वजह से बहुत मुश्किलात इनको देखनी पड़ी। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन के अंदर तब्दीली करके एक मुशरिक बादशाह हुक्मरान हुआ। बड़े लोग जो थे ना उस वक्त के, जो माशाल्लाह 30s और 40s आज के हिसाब के या उससे भी ऊपर के, उन्होंने उस बादशाह की सारी शर्तों को मान लिया, ये सोच के कि क्या करें, अब हम मजबूर हैं। लेकिन ये 8, 9, 10 लोगों का एक यंग ग्रुप था, यूथ ग्रुप था, इन्होंने उस बादशाह के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया, और इन्होंने बादशाह के दीन से कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय हक बात की। नतीजा क्या निकला कि बादशाह जो था वो इनका दुश्मन हो गया, उसने इन लोगों को पकड़ने का हुक्म दिया, ये वहां से निकले और गार में छुप गए। असल में ये वाक्या और सीरत अगर आप साथ साथ लेके जाएं तो बड़ा खूबसूरत वाक्या है। पीछे हमने अभी पढ़ा कि अल्लाह के नबी सल्लम को हिजरत की अब नवीद सुनाई जा रही है कि अब आप मक्का से मदीना हिजरत करने वाले हैं। अब यहाँ असहाबे कहफ की हिजरत का वाक्या सुना के मुसलमानों को अल्लाह ताला जहनी तौर पे तैयार कर रहा है कि देखो, वो अपना सारा आराम, घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के गार में आके पड़ गए, तो बताओ क्या तुम इन्हीं घरों की मोहब्बतों में पड़े रहोगे? क्या तुम इन चीजों को अपनी कमजोरी बना के इन्हीं के साथ रहोगे? और इन लोगों को अल्लाह ताला ने फिर गार के अंदर जिन मुख्तलिफ चीजों का शिकार किया था, आपने तर्जुमे में पढ़ा होगा, अल्लाह ने इनकी करवटें बदल दी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि अगर करवटें अल्लाह ना बदलता तो इनके जिस्मों को मट्टी खा जाती, और मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह अपने रास्ते में निकलने वालों को कभी मायूस नहीं करता। यकीन करें, हमारा काम सिर्फ कदम बढ़ाना है, मदद अल्लाह की है। अल्लाह ने सूरज को इनका ताबे कर दिया, कुत्ते को इनका मुहाफिज बना दिया, अल्लाह ताला ने इनको सारा दिन धूप नहीं लगने दी कि जल के ना रह जाएं, और बिल्कुल सूरज इनसे मुख्तलिफ रुख पे ना हुआ कि जिसकी वजह से सर्दी की वजह से मर जाएं। अल्लाह ने बादशाह और उनके दिलों में इनका ख्याल तक निकाल दिया। जिस खौफ के साथ ये निकले थे, अल्लाह ने उस खौफ को बिल्कुल बातिल कर दिया और कोई इनका कुछ ना बिगाड़ सका। कहते हैं ये इन लीड्स में से थे, बड़े घरों के लोग थे। और इससे एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि जो लोग इन लीड्स होते हैं ना, जो तीन किस्म के लीड्स हम देख रहे हैं मुसलसल, ये लोगों में जुरत होती है। देखिए कॉन्फिडेंस है ना, जिसके जेब में पैसे होते हैं वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, कहता है चलें जी कोई बात नहीं काम हो जाएगा, और जिसके पास बेचारे के पास पैसे नहीं, वो दबके बात करता है, अच्छा देखते हैं सोचते हैं। जब किसी मुआशरे के इन लीड्स, जो अल्लाह के नबी सल्लम के दौर के भी इन लीड्स थे और हजरत ईसा के दौर के ये थे, इनको बात समझ आ जाती है ना, तो ये दूसरों को भी मनवाने लगते हैं। और वाकई ये जुरत से निकले और अल्लाह ने इनको कितना अरसा सुलाए रखा। वाकया तो बिल्कुल वाज है, उसको तो दोहराने की बात नहीं, लेकिन अमल की बातें इसमें यही है कि अल्लाह अपने रास्ते में निकलने वालों को रुसवा नहीं करता। अल्लाह ताला ने इनको एक खास वक्त तक सुलाए रखा। लोगों को घरों के नरम बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती, अल्लाह ने इनको गार की पथरीली जमीन पे आराम से सुला दिया। ये इत्मीनान होता है हक के साथ चलने का, कि बंदा गालियां खा के भी बेमजा नहीं होता। अल्लाह के नबी के साथियों को तसल्लियां दिलाई जा रही हैं कि देखो अगर आज अल्लाह के नबी के साथ मुश्किलें आ रही हैं तुम्हारे ऊपर, तो याद रखो कि एक वक्त आएगा आसानियां भी मिलेंगी। फिर अगली चीज हमने इस हिस्से से जो सीखी क्या है, कि ये दलील पे जम गए, अल्लाह ने इनके यकीन को बढ़ा दिया। ईमान कब बढ़ता है? जब आपका दिल जो सच कहे उस पर आप जम जाए, और हक से बड़ी कोई चीज नहीं जो दलील के तौर पे आपकी जिंदगी में आए। फिर अगली चीज हमने इस हिस्से से सीखी कि ये लोगों से कटे तो रब से जुड़े। हम कहते हैं हम लोगों से भी ना कटें और रब से भी जुड़ जाएं, ये कभी नहीं हुआ। आप जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, कभी आप लैडर पे चढ़े हो तो जरा इमेजिन कीजिए, आप एक डंडी हाथ में पकड़ते हैं ना, फिर जब तक नीचे वाली छोड़ते नहीं आप उससे अगली नहीं पकड़ सकते। जो लोग एक चीज छोड़ने से डरे वो अगली कभी नहीं पकड़ सकते। पिछला कदम उठता है तो फिर आगे जाता है ना, तो अल्लाह के रास्ते में जाने के भी यही मरहले होते हैं। जो आगे बढ़ना चाहते हैं अल्लाह ताला उनको मजीद बढ़ाना चाहता है, और फिर अल्लाह इनको कैसे रास्ते दिखाता है जो आम लोगों को नहीं दिखे। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने इनका नाम क्यामत तक के लिए कुरान पाक में रख दिया। फिर अगली चीज इससे बात पता चलती है कि अल्लाह ऐसे लोगों की हिफाजत का इंतजाम कैसे करता है। कुत्ता गार से बाहर था। इस वाक्य को सुन के एक दफा एक यंग बच्चियों की क्लास यू कहेंगी, ओके लुक एट दिस, वी कैन कीप द डॉग, हम कुत्ता रख सकते हैं। तो मैं कह, यू डिडंट सी कि द डॉग वाज आउटसाइड द केव, वो घर के बाहर था, घर के अंदर नहीं था। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह मखलूकात को, जानवरों को और ऐसी चीजों को, बेजान चीजें जो हैं उनको भी अल्लाह ताला ऐसे लोगों की हिफाजत में लगा देता है। सिर्फ यकीन करें कि हमारा काम नियत करना है। फिर अगली बात जो पता चली कि हलाल खाने की अहमियत। इतने साल फौत होके जागे लेकिन तबीयत से हलाल का तसव्वुर नहीं खत्म हुआ। ये नहीं कहा जाओ जल्दी से खाना ले आओ, क्या कहा कि जाके पाकीजा लाना। हमें जरा भूख लग जाए हम कहते हैं जो मिलता ले आओ, वो गंदे दही बड़े ले आओ, पेट भर जाए। याद रखिए जो कौम खाने पीने की केयर नहीं करती ना, वो कौम कभी भी अपने आमाल की भी हिफाजत नहीं करती। इसीलिए तो हमारे मजहबी इबादात में कितनी पोल्यूशन है इस वक्त, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। फिर अगली बात क्या पता चली इसके अंदर, कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं। जो एक दफा खालिस दिल से अल्लाह के रास्ते में निकलता है फिर अल्लाह ताला उसको कभी भी रुसवा नहीं करता। फिर अगली चीज हमें इससे पता चली और वो क्या है, कि अल्लाह ताला मरने के बाद जिंदा करेगा। ये भी चीज उस दौर की एक बहस बन चुकी थी, इससे उनका दिल बदल चुका था, अल्लाह ताला ने इनके जरिए से वो भी कर दिया। फिर अगली चीज इस हिस्से से हमने सीखी कि कब्रों पर मस्जिद बनाना जायज नहीं है। उन्होंने ख्वाहिश की और उस दौर का रिवाज था, आपको पता है कि दीन ईसाइत में यह था कि जब इनका कोई बड़ा हो जाता था तो लोग उसकी कब्रों को इबादतगाहें बना लेते थे। अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी दिनों में इससे मना किया कि तुम उन लोगों की तरह ना होना कि जो अपने नबियों और बुजुर्गों की कब्रों को मस्जिद बना लेते थे, क्योंकि इबादत अल्लाह के लिए और अल्लाह ताला इस इबादत के अंदर जरा सा भी खलल पसंद नहीं करता। अगली चीज इस वाक्य से हमने सीखी वो कह के इंशाल्लाह कहना चाहिए। किसी काम को ये कहना कल करेंगे तो ठीक है, आज हाल क्या कि इंशाल्लाह कहना इस बात की दलील बन गई किसने करना कोई नहीं है। ये भी एक दीन के रिचुअल्स का मजाक उड़ाने की बात है। फिर अगली चीज इसमें हमें ये पता चली कि जो बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता है ना, चंद दिन अगर लोग उसके दुश्मन बन भी जाएं, तो बाद में अल्लाह ताला लोगों के दिल में खुद ही उनकी मोहब्बत डाल देता है। आज आप देख लीजिए कि जितने बुजुर्गों के नाम पे लोग शिर्क करते हैं वो इसी की दलील है। अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला ने इन बुजुर्गों को कैद तक कर दिया था, लेकिन बाद में आप देखिए कि इनके साथ क्या मामला हुआ, कि आज लोग उनका नाम लेकर एक दूसरे से झगड़ते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें हक के रास्ते में यही इस्तकामत दे। वत्लु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, तेरी जानिब जो तेरे रब की किताब वही की गई है इसे पढ़ برتر ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ اور آپ اپنے ساتھ ان کو رکھا کریں جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، کہ دنیا کی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے، اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے کو بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ ہے، یعنی دوزخ۔ اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں کر دے مستحق تو نہیں ہے، اپنی رحمت سے کر دے۔ یہ تھی آیت نمبر 27 سے 31، ان کا عنوان لکھیے، تم ان لوگوں کے ساتھ جمع رہو، اللہ حق کو غالب کرے گا۔ پیچھے ان لیڈز کی بات تھی، تو ایسے ان لیڈز جب اللہ کے نبی کے دور میں تھے تو انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہم آپ کی محفل میں آئیں گے اگر آپ بلال اور عمار اور اس طرح کے غریب لوگوں کو اپنی محفلوں سے اٹھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دیں کہ آپ ان کی بات کے اوپر آ کر ان مخلص ساتھیوں کو اپنے سے دور نہ کر دیں کہ جو بڑی محبت سے اللہ کے کلام کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، جب بندے کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں ہوتی نا، تو وہ انسانوں کے بڑے اور چھوٹے ہونے کو ہی دیکھتا رہتا ہے، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک لفظ لوگ بولتے ہیں، بڑے لوگ، حالانکہ ان کے قد مجھے تو بالکل بڑے نہیں لگتے۔ ہاں، آپ کو لگے کبھی کسی کے قد بڑا؟ تو بڑا کب کوئی بنتا ہے؟ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ۔ اللہ نے جنت اور جہنم کا تقابل کر کے دکھا دیا کہ اصل بڑائی کے معیار تو آگے جا کے دکھیں گے، اس دنیا میں جو ہو رہا ہے بس وہ تو ایک آزمائش ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں، اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا۔ کہنے لگا، میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں۔ اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اسے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اپنے معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنایا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو انہیں اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں سے اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی بجلی بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے، او یصبح ماؤہا غورا، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتا، اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہیں سے ثابت ہوا کہ اختیارات اللہ برحق کے پاس ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 32 سے 44، اس کا عنوان ہے قصہ دو باغ والوں کا۔ बास कहते हैं कि हकीकत में ये दो लोग थे और बास कहते हैं ये तमसील है, लेकिन वाक्य बड़ा खूबसूरत है। दुनिया और आखिरत का तकाबुल है, वो शख्स जो आजीला का तलबगार है और दूसरा जो आखिरा का तलबगार है, दोनों की सोच में बहुत गहरा फर्क था। एक शख्स है जो अपनी कमाई को अपनी मेहनत की कमाई समझता है, अपना हक समझता है। दूसरा वो है जो इसको अल्लाह की देन समझता है। एक वो है जो अपने कामों को इंशाल्लाह और माशाल्लाह कहकर अल्लाह पे डाल देता है। दूसरा वो है जो अपने कामों को अपने पलड़े में डालने लगता है। एक वो है जो दुनिया की नेमतों को पाके ये सोचने लगता है कि ये कभी नहीं मिटेंगी, और दूसरा वो है जो कहता है कि मेरा रब जिस वक्त चाहे इन चीजों को मिटा दे। एक दुनियादार और एक दीनदार की सोच में यही फर्क है कि दीनदार इस दुनिया में रहते हुए उस आखिरत के लिए जीता है, वो बाकी रहने वाले काम करना चाहता है, और एक दुनियादार वो सब कुछ यहीं पाने लगता है। अगर हम देखें तो हम सबके भी तो बाग है ना, वो जाहरी बाग हो या तमसीली बाग हो, कभी हमने भी सोचा कि इन चीजों को फना होना है। कुल्लु मन अलैहा फान, जब ये चीजें बाकी रहनी नहीं तो हम इसमें अपनी मेहनतों को जो लगाएंगे भी तो वो सिर्फ चंद दिन की बात है। अब देखिए कि किसी को अगर खबर हो जाए कि जमीन के किसी टुकड़े के ऊपर कोई तबाही आने वाली है, तो क्या उस टुकड़े को वो 100 की बजाय 10 का भी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो अगर हम देखें तो सिर्फ अगर दुनिया के लिए हमारी कोशिशें हैं तो वो ऐसे ही है कि हम उस जमीन के टुकड़े पे अपनी सारी मेहनतें कर रहे हैं कि जो एक वक्त आएगा कियामत के जलजलों में समंदरों के पानी के अंदर चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। इस वाक्य का जो असल लुबे लुबाप है वो इससे अगली आयतें हैं जिसको हम अल्लाह की तौफीक से कल करेंगे। आज चूंकि सूरह बनी इसराइल थी और आप सब ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इसमें हमारे लिए कितनी बातें थी, कल हम 16 पारा करेंगे लेकिन इन्हीं आयात से शुरू करेंगे और खास तौर पर मूसा और खिजर का वाक्य। हम सब के लिए उसमें बहुत सारे सबक होंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए इन बातों को हुज्जत बनाने की बजाय हमारे हक में हुज्जत बना दे। सुभान रब्बी का रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।